बिहारी के प्रेम का स्वरूप। मानवीय जीवन की सरस और सृजनशील बनाने के लिए प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्रेम के अनेकानेक रूपों में नर नारी का प्रेम सर्वाधिक पूर्ण तथा तादात्म्य मूलक होता है। इस प्रेम के स्तरों के संबंध में विचार करने पर स्थूल रूप से इसके तीन स्तर माने जा सकते हैं, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक। किंतु इन स्तरों को अलग अलग कटघरों में बांट देना मनोवैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। अपने आदिम रूप में भी प्रेम मात्र भौतिक नहीं हो सकता। शारीरिक मिलन के पूर्व भी जिस प्रकार के उल्लास, पुलक, आनंद या पीड़ा का अनुभव प्रेमी को होता है, उस प्रकार का अनुभव किसी अन्य भौतिक उपलब्धि द्वारा नहीं हो पाता। प्रेमिका के आत्मिक सौंदर्य, संवेगात्मक तथा बौद्धिक सौंदर्य का कम मूल्य नहीं आंका जा सकता। फिर भी प्रेमोत्पादन में भौतिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। सौंदर्य के वस्तुपरक पक्ष का वर्णन साहित्यकारों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। यहीं पर पुराना सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या सौंदर्य वस्तुनिष्ठ है? इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि यह आंशिक रूप में ही सही है। साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने नारी के प्रत्येक अंग का जो निरूपण कर रखा है, उसके लिए जो अप्रस्तुत चुन रखा है, वह सौंदर्य की वस्तुनिष्ठता का द्योतक है। पर वस्तुनिष्ठ सौंदर्य को एक विशेष संदर्भ में सौंदर्य तब माना जाएगा जब वह प्रेमी के आकर्षण का हेतु हो सके। इसलिए सौंदर्य शास्त्रियों ने विषय और विषय के पारस्परिक संबंधों में सौंदर्य की सन्निहिति मानी है। प्रेम का आत्मिक स्तर वह है जहां पहुंचकर भौतिक आकर्षण की अपेक्षा आत्मिक सौंदर्य के प्रति मन की ललक अधिक दिखाई पड़े। इससे उत्पन्न उल्लास से एक व्यापक सौंदर्य चेतना आविर्भूत होती है। जीवन का अनुकूल वंदनीय नवीन स्पंदन सुनाई पड़ता है। इसके द्वारा जो संवेदना अथवा संवेग जागृत होता है, वह व्यक्ति विशेष के प्रति केंद्रित होते हुए भी उसका अतिक्रमण कर जाता है। रोमांटिक प्रेम का यही स्तर है। आध्यात्मिक प्रेम में प्रेमी आत्म केंद्रबद्ध नहीं रह जाता। उसका केंद्र ऐसा व्यापक हो जाता है कि वह केंद्र न रहकर वृत्त में बदल जाता है। कहना ना होगा कि ऋति कवियों का प्रेम पहले प्रकार का है, अर्थात वह भौतिक धरातल से ऊपर नहीं उठ पाता। उनके प्रेम का मुख्य प्रेरक स्रोत शरीर सौंदर्य है और उसकी चरम परिणति भी वही है। बिहारी का कहना है, तोतन अवधि अनूप रूप लग्यो सब जगत को, मोद्रिग लागे रूप द्रिगनी लगी अति चटपटी। यहाँ पर नायक के दृग नायिका के रूप से लग गए हैं, अर्थात उस पर अनुरक्त हो गए हैं। बिहारी ही नहीं, रूप की रमणीयता के प्रति आकृष्ट होना सहृदय का सहज धर्म है। किंतु प्रेम के संबंध में बिहारी तथा अन्य ऋति कवियों की मान्यताएं सर्वथा लौकिक स्तर पर ही रह गई है। लौकिक स्तर का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर किसी पारलौकिक या अलौकिक स्तर की मांग की जा रही है। इसका इतना ही अर्थ है कि उनके प्रेम वर्णन में हृदय को व्यापक बनाने वाली प्रकाश की किरण नहीं है। सरस सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठान, गोह निबाहे जीती है खेली प्रेम चौगान। यहाँ पर प्रेम चौगान का खेल है। सचमुच में बिहारी का मन इस खेल में खूब रमा है। इसमें अनेक प्रकार के दांव पेच, लुका छिपी की जरूरत पड़ती है। इस चौगान को जीतने के लिए अमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसमें ऋति काव्य के नायकों को काफी कमाल हासिल है। ऋति काव्यों के नायक अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों के कारण खुलकर प्रेम नहीं कर सकते थे। उनके प्रेम में वह आवेग नहीं था जो इन प्रतिबंधों को अपनी प्रखर धारा में बहा ले जाता। खेल में तो सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, जिससे अन्य लोगों से छिपकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। चौगान खेल को ऋति कवियों के प्रेम का प्रतीक माना जा सकता है। इसके ठीक विपरीत स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों ने डंके की चोट पर कहा है। घनानंद का कथन, अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां नैकु सयानक बाक नहीं, तहां साचे चले तजी आपन पौ, झिझकै कपटी जे निशांक नहीं। अब बोधा का कथन, लोक की लाज और सोच प्रलोक को, वारिय प्रीति के ऊपर दो, गांव को गेह को देह को नातो स्नेह मय, हाथों करे पुनी सो। बोधा सुनिति निबाह करे, धर ऊपर जाके नहीं सिर हो, लोक की भीति डिरात जो, मिततव प्रीति के पेड़े पड़े जनी को। उन्होंने प्रेम को वह नई मर्यादा दी जो लोकशास्त्र निबद्ध मान्यताओं को अतिक्रमित कर जाती है। उन्हें लौकिक बंधनों की कोई चिंता नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति, जैसा पहले कहा जा चुका है, यथार्थ को नई दृष्टि से देखता है। वह ऐसे नए मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है जो परंपरा के मेल में नहीं होते। वह निसंक होकर प्रेम पंथानुगामी होता है। वह गुमराह करने वाले अवांछनीय तत्वों को, घर के महत्व, लोक की निंदा आदि को नगण्य मानता है। उनके प्रेम के मूल में भी रूपा शक्ति है, पर वह उनके लिए खेल नहीं है। प्रेम उनके जीवन मरण का सवाल बन गया है। प्रेम की महत्ता और गहराई के संबंध में बिहारी जैसे विचक्षण कवि अपरिचित नहीं थे। जिस कवि ने शास्त्रीय परंपराओं का इतना मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया हो, वह प्रेम के महत्व से अनभिज्ञ हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। इन्होंने लिखा है, गिरी तें उचे रसिक मन, बूढ़े जहां हजार, वह सदा पशु नरन कौ प्रेम पयोधि पगार। इस दोहे में रसिकों की ऊंचाई और प्रेम पयोधी की निमग्नता के साथ साथ उसे छिछली तलैया समझने वाले नर पशुओं का भी उल्लेख किया गया है। पशु नरन शब्द कवि की झल्लाहट का द्योतक है। प्रेम की वास्तविक महत्ता को न समझकर उस पर टीका टिप्पणी करने वालों पर गहरा व्यंग है। उनका प्रेम समुद्र की भांति अटल, निर्बाधित और अनंत है, फिर भी उसी की भांति अपनी सीमाओं में रहने वाला। यही नहीं, उन्होंने उपचार निरपेक्ष प्रेम की भी चर्चा की है। नैक न झरसी बिरह झर, नेह लता कुमिलाती, नित नित होती हरी हरी, खरी झाल रती जाती। इसे कालिदास के उस श्लोक की प्रतिध्वनि समझना चाहिए जिसमें विरह में प्रेम के राशिभूत होने का उल्लेख हुआ है। स्नेहा नाहुह किमपि विरहे ध्वसिन्नस्ते त्वभोगात् इष्टे वस्तु न्युपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति। यही नहीं, सज्जन के स्नेह का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, चटक न छाड़त घटहू सज्जन नेह गंभीर, फीको पड़े न बड़ू फटे रंग्यो चोल रंग चीर। सज्जन का स्नेह चोल रंग में रंगे चीर की भांति फट जाने पर भी घटता नहीं। पर इन स्फुट उक्तियों को परंपरा का ही आग्रह समझना चाहिए, बिहारी की अपनी मान्यताओं का नहीं। वे नागर रुचि के व्यक्ति हैं और नागर संस्कृति को उन्होंने खुली अभिव्यक्ति दी है। इस अर्थ में वे अन्य रीति कवियों से कुछ भिन्न थे। जहां अन्य कवियों को पहले के संस्कारों का भय था, वहां बिहारी इससे बहुत कुछ मुक्त थे। भयग्रस्त रीति कवियों ने एक ओर यथावसर ऊंचे ऊंचे आदर्शों की दुहाई दी है, वहां दूसरी ओर खुले श्रृंगार का वर्णन भी किया है। बिहारी में इस तरह का खास अंतर विरोध नहीं दिखाई देगा, इसलिए उनकी सत्सई में तत्कालीन सामंतीय प्रेम का जितनी ईमानदारी से चित्रण हुआ है, उतनी ईमानदारी से अन्य समसामयिक काव्यों में नहीं हुआ है। जिस क्रीड़ापड़क प्रेम का चित्र उन्होंने उड़ेहा है, वह पूर्णतः सामंतीय है। पहले कहा जा चुका है कि रीति काव्यों के प्रेम का मुख्य आकर्षण केंद्र शरीरी सौंदर्य था। बिहारी ने इसका वर्णन चार रूपों में किया है, प्रभावात्मक रूप में, वस्त्राभूषणों के बीच में, घरेलू वातावरण में और परंपरा के मेल में। प्रभावात्मक रूप में, जहां कवि रूढ़ियों से सर्वथा मुक्त होकर सौंदर्य की प्रभावान्विति का अनुवर्णन करता है, वहां पाठकों की इंद्रिय चेतना को सर्वथा उद्बुद्ध करने में शक्य होता है। स्वयं सौंदर्य किसी अंग विशेष में नहीं होता और न तो अंगों के सुषम संस्थान में ही उसकी संस्थिति स्वीकार की जा सकती है। सब मिला जुलाकर वह ऐसा प्रभाव होता है जो हमारी रागात्मिका वृत्ति को उभार देने में पूर्णतः समर्थ होता है। प्रभावमूलक सौंदर्य का एक उत्कृष्ट चित्र देखिए, अंग अंग छवि की लिपट उपटती जाती अच्छे है, खरी पात्रियु तऊ लगे भरी सो देह। मुक्ताफल की छाया के तारल्य की भांति अंगों में प्रतिभासित होने वाला लावण्य सौंदर्य है। नायिका के अंग अंग में छवि की चमक निरंतर उभरती जाती है। यद्यपि कवि का मुख्य कथ यही है कि फिर भी इतने से उसके लावण्य को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसकी छवि द्वारा उठती हुई तरंगों का जो परिवेश निर्मित किया गया है, उसके द्वारा उसकी तनुता भरी भरी सी लगती है। वही नायिका के सौंदर्य को इंद्रिय और प्रभावानन बना सका है। इस दोहे की श्रेष्ठता किस पर निर्भर है, अभी यह प्रश्न अनुत्तरित सा ही रह गया। इसका उत्तर पाने के लिए एक दूसरा दोहा भी देखना पड़ेगा। अंग अंग नग जग मगे दीप सिखासी देहे, दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़ो उजारो गेह। नायिका के अंग अंग नग उसकी दीपशिखा सी देह से जगमगाते रहते हैं, इसलिए दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला रहता है। इस दोहे में भी देह की दुति का ही वर्णन किया गया है। इन दोहों में छवि की लपटों या दीपशिखा के निर्धुम लौ के प्रभावों की व्यंजना की गई है, पर जहां पहले का प्रभाव जीवन और जगत की अनुभूत छवियों से बांध दिया गया है, वहां दूसरे का प्रभाव एक मिथ्या और काल्पनिक सत्य से बांधा गया है। पहले दोहे में छवि की लपट और उससे उत्पन्न प्रभाव के अंतर संबंधों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वह पाठकों के राग तत्व को सहज ही छू देते हैं। दूसरे दोहे में दीपशिखा सी देह तथा प्रकाश का अंतर संबंध स्थापित ही नहीं हो पाया है। इन संबंधों को बहिसंबंध ही कहा जाएगा। यह चमत्कार विधायक तो है पर राग विधायक नहीं। खेद है कि विशुद्ध प्रभावात्मक रूप चित्र बिहारी में कम है। वस्त्राभूषणों के बीच रीति कवियों ने नायिका के सहज सौंदर्य पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि उसके अलंकृत सौंदर्य पर। रीतिकालीन वैभव विलास के अनुकूल नायिकाओं का भी उन्मादक चित्र खींचना उनकी रुचि के अधिक अनुकूल था। वस्त्राभूषण नायिका के अभिजाति के सूचक, शालीनता के रक्षक, सौंदर्य के अभिवर्धक और नायक के प्रेम के उद्दीपक हैं। वे अपनी रंगीन छाया से नायिका में नवीन आकर्षण और मादकता भर देते हैं। इस तरह के सौंदर्य चित्र बिहारी में ढेर मिल जाएंगे। एक एक करके कुछ उदाहरण देखिए। सहज सेत पंच तोरिया पहिरत अति छबी होती, जल चादर के दीप लौ जगमगाती तन ज्योति। पंच तोलिया एक प्रकार का अत्यंत बारीक महीन वस्त्र है। उसकी पूरी सारी तौल में केवल 5 तोले की होती है। इस वस्त्र के पहनने से नायिका की शोभा विशेष बढ़ जाती है। स्वभाव रमणीयानी मंडितानी अति रमणीय भवंती। स्वभाव से ही रमणीय नारी वस्त्राभूषणों से मंडित होने पर और भी रमणीय हो जाती है। धनिकों के किसी उद्यान में किसी किसी ऊंचे स्थान से जल का झीना तथा विस्तृत प्रवाह गिराया जाता है, यह जल चादर कहलाता है। किसी किसी जल चादर के पीछे से जगमगाती हुई दीपावली बड़ी शोभा देती है। इसी दीपावली को बिहारी ने जल चादर के दीप कहा है। पंच तोलिया से आवृत नायिका के शरीर की पिताब कांति जल चादर के पीछे रखे हुए दीपकों की भांति जगरमगर करती हुई शोभित हो रही है। यहाँ पर भी वही पुराना प्रश्न उठता है कि यदि सौंदर्य का यह चित्र श्रेष्ठ है तो क्यों। इस क्यों का उत्तर ही मूल्यांकन है। छंदों का अन्वय मात्र न तो आलोचना है और न मूल्यांकन। श्वेत पंच तोलिया वस्त्र से झांकता हुआ नायिका का पीताभ सौंदर्य उसी प्रकार से शोभन प्रतीत होता है जिस प्रकार से जल चादर के पीछे से जगमगाती हुई दीपशिखाएं। इस चित्र की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर है कि कवि वास्तविकता से कहाँ तक संबंध स्थापना कर सका है और स्वयं वह वास्तविकता किस प्रकार की है। नायिका की छवि मानसिक वास्तविकता है और जल चादर का दीप भौतिक वास्तविकता। निश्चय ही इनके संबंध स्थापन में कवि को सफल कहा जा सकता है। अप्रस्तुत ने नायिका के पारदर्शी सौंदर्य को जिस ढंग से प्रत्यक्षीकृत किया है वह सराहनीय है। प्रभावात्मक चित्र की अपेक्षा यह अधिक रंगीन और रंजक है, किंतु उसे उतना संविदात्मक नहीं कहा जा सकता। उतना संविदात्मक का अर्थ यह नहीं है कि यह संविदात्मक नहीं है, यहाँ केवल संवेदना के दर्जे का सवाल है। छिप्यौ छबीलो मुख लसय नीले अंचल चीर मनोकलानिधि झलमलय कालिंदी के नीर। इस सौंदर्य चित्र में जो संबंध स्थापन किया गया है वह भी कृत्रिम ही है, पर इसमें साध्य वसान संवेदना के रूप में हुआ है, इसलिए इसकी संवेदनात्मक गहराई भी श्लाघ्य है। उत्प्रेक्षा के रूप में जो अप्रस्तुत ले आया गया है वह पहले उदाहरण में ले आए गए अप्रस्तुत की अपेक्षा अधिक व्यापक और सार्वजनीन है, पर पहले उदाहरण की तरह यह न ही रंजक है और न प्रभावोत्पादक। बात यह है कि इसका अप्रस्तुत लोकसिद्ध है जो सामान्यतः उपमा के क्षेत्र में गृहित होता है अथवा अयथास्थान प्रयुक्त होने के कारण यह अपेक्षाकृत श्रीहीन लगता है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इसका अप्रस्तुत भी संभावना मूलक है, लेकिन संभावना मूलक अप्रस्तुत भी दर्जों का अंतर स्वीकार करना होगा। पहले और दूसरे उदाहरणों की अपेक्षा इसका अप्रस्तुत प्रस्तुत का इंद्रिय बिंब व्यवस्थित करने में असमर्थ है। उछलते हुए जुगमीन चमकती हुई चंचल आँखों का दृश्य खड़ा करने में निर्बल प्रतीत होते हैं। इस तरह के रूपों चित्रों में बिहारी की प्रतिभा जहाँ रम सकी है वहाँ के चित्र निश्चय ही संवेद्य बन पड़े हैं। परंपरा। यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा फिर भी उनकी दृष्टि से लक्षण ओझल नहीं थे। उन पर रीति परंपरा और शास्त्रीय रूढ़ियों का गहरा प्रभाव था। नायिका का नक्षिक रूप वर्णन संस्कृत कवियों का भी प्रिय विषय था। रीतिकाल में तो नक्षिक के वर्णन की अत्यधिक बहुलता दिखाई पड़ती है। बिहारी ने नक्षिक वर्णन क्रमबद्ध रूप में नहीं किया है पर अधिकांश रूपाधायक अवयवों का जो चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है वह परंपरा भुक्ति है। कुछ उदाहरण देखिए। केस सहज सचिक्कन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गणत न मन पथ अपथ लखी बिथुरे सुथरे पार। भौं चित्तवनी भौं कमान गढ़ रचना बरुनी अलक तरुनी तुरंगम तान आघु बकाई हौ बढ़े। नयन बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैना हरिनी के नैनान ते हरिनी के ये नैन। मुख सूर उदित हूँ मुदित मन मुख सुषमा की ओर चितय रहत चहु ओर ते निहिचल चखनी चकोर। मुख पर ही दूसरा दोहा पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास नित प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। हास्य नैक हसौही बानी तजी लख्यो परत मुख नीठी चौका चमकनी चौंध में परत चौंधी सी डीठी। कटी ज्यो ज्यो जोबन जेठ दिन कुछ मिति अति अधिकाती त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा छीन परते सी जाती। जंघा जंघ जुगल लोयन निरय करे मनो विधि मैन केली तरुण दुख दैन ये केली तरुण सुख दैन। एड़ी पाए महावर दैन कौ नाइन बैठी आए फिरी फिर जानी महावरी एड़ी मिरती जाए। पगतल पग पग मग अगमन परत चरण अरुण दुति झूली थौड़ ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूली। उपर्युक्त उदाहरणों में अंतिम को छोड़कर जिन अवयवों का सौंदर्य वर्णन हुआ है वे हमारे सौंदर्य बोध को किंचित भी उद्बुद्ध नहीं कर पाते। इनमें बाह्य वास्तविकताओं से जो संबंध स्थापन हुआ है वह कृत्रिम है। सूर्योदय होने पर चकोर का मुख सुषमा की ओर देखना चमत्कार मूलक है संवेदना मूलक नहीं। यह चमत्कार भी घटिया दर्जे का ही कहा जाएगा। पत्रा ही तिथि पाइये के अंतर संबंध तो वास्तविकता से और भी दूर है इसलिए उसका सौंदर्य उर्दू शायरी की विदग्धता का भी अतिक्रमण कर जाता है। उसी प्रकार यौवन को ज्येष्ठ का दिन और कटी को रात्रि कहना असंगत और यथार्थ जगत से कितना दूर है। काव्य में प्रयुक्त अप्रस्तुत हमारे अनुभव जगत से जितने दूर होंगे प्रस्तुत अप्रस्तुत का संबंध स्थापन जितना ही कृत्रिम होगा काव्य पाठकों को रसावेश की स्थिति में ले जाने में वह उतना ही असमर्थ होगा। हरिणी के नैनान केली तरुण आदि तो पिटे पिटाए अप्रस्तुत हैं ही। संयोग रीति काव्यों में संयोग श्रृंगार के प्रति जितनी ललक दिखाई पड़ती है उतनी वियोग श्रृंगार के प्रति नहीं। संयोग श्रृंगार का मूलाधार शारीरिक आकर्षण है जो अनेक प्रकार के रूपों भंगिमाओं चेष्टाओं वाचिक और शारीरिक विकारों मानसिक दशाओं आदि में प्रस्तुत होता है। इस प्रसंग में कवि परंपरा से सुरति षट ऋतु वर्णन विहार मद्यपान क्रीड़ा अष्टयाम आदि का वर्णन करते आए हैं। दर्शन श्रवण स्पर्श संलाप आदि के सहारे संयोग का महल खड़ा किया जाता है इसलिए इनका समावेश भी इस काल की कविताओं में खूब हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन कवियों का विशेष रूप से बिहारी का मन क्रीड़ा पड़क प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा है। इसके फलस्वरूप इनकी सतसई में सुरति चित्रों का भूरिसह उल्लेख हुआ है। जिस हाव योजना या भंगिमा वर्णन के लिए बिहारी की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, उसके मूल में यही प्रवृत्ति समझना चाहिए। भंगिमाएं, भंगिमाएं दो प्रकार की मानी जा सकती हैं, स्वाभाविक और सचेष्ट। स्वाभाविक भंगिमा वह होती है जिसमें अपने व्यापार के मूल में व्यक्ति का कोई मनोविकार अनुसूत नहीं रहता। सचेष्ट भंगिमा सोद्देश्य होती है, एक विशेष प्रकार की भंगिमा जो संभोग इच्छा सूचक होती है, काव्य शास्त्र में हाव कही जाती है। बिहारी सत्साई में दोनों प्रकार की भंगिमाओं के चित्र मिलेंगे, पर श्रृंगार काव्य में निरपेक्ष भंगिमाओं का कोई महत्व नहीं है, इसलिए स्वाभाविक भंगिमाओं को भी दृष्टा की प्रतिक्रियाओं से बांध दिया गया है। दूसरे शब्दों में इन भंगिमाओं को नायक की दृष्टि से अर्थ दिया गया है। पहले हम इसी का विवेचन करना चाहेंगे, एक उदाहरण देखिए। जज्यों उझकी झापती बदन झुकती बिहसी सतराई तत्यों गुलाल मूठी झूठी झजकावत पिय जाई। यह फाग का अवसर है, नायक नायिका पर गुलाल फेंकने के लिए प्रस्तुत है। आंखों में गुलाल पड़ जाने के भय से वह घूंघट में मुंह ढांपती है, कुछ झुक जाती है, फिर हंस देती है, आखिर में झल्ला भी जाती है। नायक को उसकी चेष्टाएं इतनी सुखद प्रतीत होती है कि वह फिर फिर उन्हें देखने की अभिलाषा से झूठे ही मुट्ठी ताने रहता है। यहाँ चेष्टा का सुख कितना काम्य हो उठा है। इस खेल का एक दूसरा दृश्य देखिए। नाक चढ़े सीबी करे जितय छबीली छैल फिर भूली वह गहे प्यो कंकड़ीली गैल। इसके अवतरण का उल्लेख करते हुए रत्नाकर जी ने लिखा है, नायक नायिका दोनों कहीं जा रहे हैं, मार्ग का एक भाग तो लोगों के चलते चलते चिकना हो गया है और दूसरा भाग कंकड़ीला है। नायक प्रेम के मारे नायिका को तो अच्छी ढूंढरी पर लिवाए जाता है और स्वयं उसके पाँव में कंकड़ियाँ चुभती है। उसकी चेष्टा से यह बात ज्ञात करके नायिका प्रेमाधिक्य के कारण उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर सीबी करती और नायक को उस मार्ग से चलने को बरसती है। नायक उसका कहना मानकर कुछ दूर तो इस प्रकार सिमट कर चलता है कि उसको कंकड़ियाँ ना गड़ें, पर नायिका का वह नाक चढ़ाकर सीबी करना उसे ऐसा भा गया कि वह फिर जानबूझकर उसके चिढ़ाने तथा उसकी वह मोहिनी चेष्टा देखने के निमित्त ऐसा करता है और फिर उसी प्रकार नाक चढ़ाकर सीबी करे। यहाँ पर सीबी का व्यापार निश्चेष्ट है, पर नायक को उससे सुखानुभूति प्राप्त होती है। कुछ उदाहरण और लीजिए। बिहसती सकुचती सीधिये कुछ आचर बिचवाह भीजे पट तट कऊ चली नहाए सरोवर माह। दूसरा, बढ़त निकसी कुचकोर रुचि कढ़त गौर भुजमूल मन लुटी गौ लोटनी चढ़त चोटन ऊंचे फूल। अहे दहेड़ी जिन धरे जिन तू लेही उतारी नीके हैं झीके छुए ऐसे ही रहे नारी। पहले उदाहरण पर एक टिप्पणी देखिए। स्तन नारी का एक सर्वाधिक आकर्षक अंग है, स्नानोपरांत झीना वस्त्र उसके शरीर में चिपक जाता है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह बाहों में स्तनों को ढक लेती है। कामजन्य डर के अभाव में लज्जा की भावना उद्दीप्त नहीं होती। एकांत स्थान में स्नान करती हुई स्त्री के लिए गोपन क्रिया बहुत आवश्यक नहीं है। यह कामजन्य संकोच दूसरे व्यक्ति के सामने ही उत्पन्न होता है, विशेष रूप से पुरुष के सामने। स्मरण रखने की बात है कि बिहारी की नायिका सरोवर से निकल रही है, इसके तट पर बिहारी जैसे रसिकों का जमघट लगा रहता होगा। अतः शालीन नायिका के लिए आवश्यक था कि वह अपनी बाहों में स्तनों को ढक लेती। विद्यापति की सदा स्नाता तरुणी नायिका के सामने कोई पुरुष या नारी नहीं है, अतः कवि को उसके नग्न सौंदर्य के वर्णन में कोई शालीनता जन्य बाधा नहीं प्रतीत हुई। यह शुद्ध लज्जा अथवा शालीनता का उदाहरण है, इसे हाव से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए, इसलिए इस तरह की भंगिमाओं को मैंने स्वाभाविक कहा है। दूसरे उदाहरण में नायक ने नायिका को फूल चुनते समय देखा है। इस क्रिया में हाथ को ऊंचे करने तथा ग्रीवा को पीछे की ओर झुकाने से उसके कुछ आगे को निकल आए एवं अंचल के सरकने से भुजमूल तथा उदर कुछ उघर गए। इस अवस्था में उसकी त्रिबली देखकर नायक का मन लुट गया। तीसरे उदाहरण में छींके पर दहेड़ी रखने को नायिका का व्यापार नायक को अत्यंत प्रिय लग रहा है, इसलिए वह कहता है कि तू दहेड़ी छींके पर न रखो और न उतारो, छींके को अच्छी तरह से छू रखो, इस स्थिति में रखने से नायक को तनाव के कारण उसके वक्ष का इंद्रियोत्तेजक उभार देखने का शुभ अवसर मिलता रहेगा। यह भंगिमा भी छींके के छूने से अपने आप बन गई है, पर नायक को उसमें चक्षु रंजन का एक मौका मिल जाता है। उपर्युक्त भंगिमाओं में फाक के अवसर पर जो भंगिमा दिखाई गई है वह सर्वाधिक सुंदर और संवेद्य है। वह अपेक्षाकृत अधिक गत्यात्मक है, इसलिए श्रेष्ठ भी है। उसमें कवि ने जीवन के यथार्थ को एक ऐसे यथार्थ प्रसंग में चित्रित किया है कि वह बहुत ही स्वाभाविक तथा संवेदनापूर्ण बन गया है। शेष चित्रों में स्नान करके निकलती भी नायिका अपनी शालीनता के कारण पाठकों को प्रिय लगती है। फूल लोढ़ने का चित्र एंद्रोत्तेजक हो गया है तो दहेड़ी रखने का चित्र गाम्य। हाव, पहले ही कहा जा चुका है कि संभोगिच्छा प्रकाशक सचेष्ट व्यापार हाव कहे जाते हैं। प्रेमोदीन के कार्य में इसकी महत्ता का विशेष आकलन किया जाता है। कुछ आचार्यों ने हाव के भेद बतलाए हैं, पर वे भ्रामक हैं। जैसा आचार्य शुक्ल का मत है कि हाव को विभाव के अंतर्गत ही मानना अधिक संगत है। हाव एक प्रकार का उद्दीपन है जो प्रेमी के हृदयस्थ रतिभाव को उद्दीप्त करता है। संयोग श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर यह प्ले इंस्टिंक्ट की कोटि में रखा जाएगा। प्रेम का यह क्रीड़ा पड़क रूप सामंतीय जीवन की विलासिता के अनुरूप ही था, इसलिए बिहारी ने इस तरह के वर्णनों में खूब रुचि ली है। देखिए, पहला, त्रिबली नाभि दिखाए कह सिर ढकी सकुच समाही, गली अली की ओट है चली भली विधि माही। दूसरा, देख्यो अनदेख्यो कियो अंग अंग सबै दिखाए, बैठती सी तन में सकुची बैठी चित ल जाए। तीसरा, ऐचती सी चितवनी चितय भई ओट अलसाए, फिरी उझकनी कौ मृग नयनी दृगनी लगनिया लाए। चौथा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भवानी हसै दैन कहे नटी जाए। पांचवा, भवानी त्रासती मुँह नटती आखिन सो लपटाती, ऐची छुड़ावती करु इची आगे आवती जाती। उपर्युक्त सभी उद्धरणों के व्यापार संभोगिच्छा सूचक हैं। चित्रों की सफाई पर भी मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना है। पहले उदाहरण में व्यापार की अस्पष्टता, त्रिबली और नाभि का प्रदर्शन बहुत आकर्षक नहीं कहा जा सकता। आजकल तो त्रिबली और नाभि का प्रदर्शन फॉरवर्ड होने की निशानी मानी जाती है। यदि यह सांस्कृतिक सुरुचि का द्योतक है तो बिहारी की नायिका को दोषी ठहराना आलोचक का पिछड़ापन माना जाएगा। क्यों? जो लोग भारतीय परंपरा का सामान्य ज्ञान रखते हैं वे उपर्युक्त चित्रण की सुरुचिपूर्णता में संदेह प्रकट करेंगे। उदाहरण संख्या दो की नायिका के व्यापार अधिक जटिल बौद्धिक तथा सांकेतिक है। तीसरे दोहे की सांकेतिकता थोड़ी और सूक्ष्म है। चौथे की प्रेम क्रीड़ा में नाटकीय तत्व की प्रचुरता के साथ प्रेम की गहराई भी परिलक्षित होती है। पांचवें में क्रीड़ात्मकता अधिक है, पर परस्पर विरोधी क्रियाओं द्वारा इस चित्र को भी थोड़ा गूढ़ बना दिया गया है। पहले दोहे में जो चित्र उड़ेहा का है उसकी अपेक्षा अन्य चित्र अधिक प्रभाव उत्पादक बन पड़े हैं, क्योंकि उनके बोध के लिए अपेक्षाकृत व्यापक बौद्धिक मानसिक संगठन की आवश्यकता है। जिस चित्र के लिए, उसके बोध के लिए जितने व्यापक मानसिक संगठन की जरूरत होगी वह उतना ही प्रभु विष्णु और संविदात्मक होगा। प्रेम क्रीड़ा के अन्य रूपों में दाम्पत्य क्रीड़ा, चोर मिहिचनी का खेल, पारस्परिक आलिंगन चुंबन, आंख आंख का खिलवाड़, घूंघट की ओट की चोट आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें दाम्पत्य क्रीड़ा के चित्र बहुत ही मनोरम और आकर्षक बन पड़े हैं। हंसी ओठन बीच कर उचय किए निचोहे नैन, खरे अरे प्रिय के प्रिया लगी बिरी मुख दैन। दूसरा, नाक मोरी नाहों करे नारी निहोरे ले, ग्रुवट ओठ बिये आंगुरिन बिरी बदन पिय दे। पहले दोहे में विश्रब्द नवोढ़ा नायिका की चेष्टा वर्णित है। अब उसे नायक का इतना अधिक विश्वास हो गया है कि वह उसे पान खिलाने के लिए पास जाने लगी है। ओठों के बीच हंसकर हाथ ऊंचा और आंख नीची करके प्रिय के मुख में पान देती है। मध्यवर्गीय शालीनता से अपरिचित व्यक्ति इसके पूर्ण सौष्ठव को स्वायत्त नहीं कर सकता। संकोच, लज्जा और विश्वास का संगम चित्र को आत्यंतिक इंद्रिय मनोरमता प्रदान करता है। दूसरे चित्र में नायक नायिका को पान खिलाना चाहता है। वह नाक सुकोड़ती भी कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। नायक बेचारा बार बार आग्रह करता है। नायिका उसका पान मुंह में लेती हुई ऐसा भाव प्रकट करती है मानो उस पर बड़ी कृपा कर रही है। इसी समय नायक उसके कोमल अधरोष्ठों को छू देता है। इन दोनों चित्रों के सारे व्यापार स्वाभाविक हैं, जीवन से गृहित हैं, इसलिए इनका सौंदर्य भी मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बन पड़ा है। प्रेम क्रीड़ा के लिए चोर मिहिचनी खेल की भी व्यवस्था की गई है। इस खेल का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, यह एक बहाना मात्र है जिसमें गाढ़ालिंगन की खुली छूट मिल जाती है। दो चोर मिहिचनी खेली न खेल अघात, दुरुत ही लपटाए कह छुवत ही लपटात। अटा पर चढ़ी हुई नायिका की क्रीड़ा का एक शोभन रूप देखिए। छिनक चलती ठटकती छिनक, भुज प्रीतम गलदारी, चढ़ी अटा देखती छटा, बिज्जू छटा सिनारी। बिजली की ज्योति की तरह लावण्य वती नायिका घिरे हुए बादलों की शोभा निहार रही है। प्रियतम के गले में बाह डालकर क्षण भर कभी चलती है और क्षण भर कभी ठिठक जाती है। भुज प्रीतम गलदारी की व्यंजना घटा के प्रसंग में कितनी गूढ़ और मनोवैज्ञानिक बन पड़ी है। क्रीड़ा में चतुराई का बहुत योग होता है, उसका भी एक उदाहरण देखिए। लरिका लयबय के मीसनी लंगर मोड़ ढिगाए, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआए। अब चुंबन का एक दृश्य देखिए। अंगुरिन उची भरु भीति दय, उलमे चितय चखलोल, रुचि सो दूहू दूहन के चुमय चारु कपोल। ऐसे सुयोग नगर निवासी नायक नायिका को ही सुलभ हो सकते हैं। बिहारी सत्सई में प्रेम क्रीड़ा का बहुत बड़ा भार आंखों के मध्य पड़ा है। प्रेम के व्यापार में है भी आंखों का बहुत ही महत्वपूर्ण योग। ये आंखें भी साधारण आंखें नहीं है, वे रस श्रृंगार मंजनों की एक खंजन भंजन दैन है। दूसरे शब्दों में हाव भाव कटाक्ष आदि में पूर्ण दक्ष है। प्रेम को मादक बनाने के लिए नेत्रों का बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका अपांग वीक्षण। इसलिए सखी एक दोहे में नायिका की प्रशंसा करती हुई कहती है, अनियारे दृग दृगनी कितौ न तरुणी समान, व चितवनी औरे कछु जिही बस होत सुजान।